मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं ब्रजेश कुमार, आप गया बिहार से हैं, चेतन आप मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं और सम्यक आप रांची झारखंड से हैं। तो ब्रजेश, चेतन और सम्यक आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज भी मैं आप सबको एक बहुत अच्छी सूचना देने जा रहा हूं। इस तरह की सूचनाएं इनफैक्ट राहत देने वाली होती हैं और साथ ही साथ आप सब जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कहीं न कहीं उनके लिए एक उत्साह प्रदान करने वाला और थोड़ा बहुत तो मार्गदर्शक का भी काम करने वाला होता है। और सूचना दोस्तों यह है कि जब मेरी ऑलरेडी 15 दिन की क्लासेस चल रही थी उस समय मुझे एक मेल मिला था और ये मेल लिखा था रोशनी ने, जो फूलपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने मेल के जरिए सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट के लिए हो गया है और उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय इस afis.com को दिया था, स्पेशली डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट को। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और कोई दूसरे संस्थान में जाकर के मार्गदर्शन हासिल नहीं किया। अपनी पूरी तैयारी लंबे अरसे से वो डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से ही कर रही थी। तो मित्रों मैं रोशनी को आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इस खूबसूरत सफलता के लिए बहुत बहुत और बहुत बधाइयां देता हूं और साथ ही हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य की उनकी सफलताएं इससे भी कई गुना बेहतर हों। रोशनी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं आपसे कारपोरेट सामाजिक दायित्व इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि कभी कभी रेडियो की खबरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, जैसा कि कल रेडियो समाचार में आपको लगा भी होगा। और चूंकि अब देखिए चुनाव का दौर शुरू हो गया है तो अब रेडियो और टीवी चैनल्स में भी आपको चुनावी खबरें खूब मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी खबरें उपेक्षित होंगी। हां, जो सरकारी तंत्र है, चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो केंद्र सरकार में जो दूसरी गतिविधियां हैं वो तो बट नेचुरल है कि थोड़ी सी धीमी पड़ जाएंगी, तो इसीलिए आपको खबरें कम मिलेंगी। चूंकि सरकार भी आचार संहिता के तहत काम करती है, बहुत एक्टिव नहीं रहती है, तो खबरों की संख्या तो कम हो जाएगी। लेकिन बस यहां सतर्कता के बतौर मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में जो हमारे अखबार हैं इन पर थोड़ा सा आपको अधिक फोकस करना चाहिए। अखबार में फिर दूसरी खबरें ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से आनी शुरू होती हैं और खासकर ऐसी दूसरी खबरें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए कुछ ऐसी ही खबरों को देखते हैं। एक बात, रेडियो न्यूज में आपने लोक सेवा प्रसारक शब्द सुना होगा। लोक सेवा प्रसारक, जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, ये लोक सेवा प्रसारक क्या है? जो हमारा जो ऑफिशियल मीडिया है, जिसमें आप रेडियो को लेते हैं, जिसमें आप दूरदर्शन को लेते हैं, फ्रेंड्स, इन्हें कहा जाता है लोक सेवा प्रसारक। यानी कि ये जो मीडिया है, रेडियो और दूरदर्शन, ये किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है। इनका उद्देश्य इस प्राइवेट वालों की तरह होड़ में लग करके आगे निकलना और पैसा कमाना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी जो पब्लिक है उनकी सेवा करना, यानी उनके लिए जो जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें उन तक पहुंचाना, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना, उनके अंदर उत्साह पैदा करना, सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देना ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो जो पूरी तरह से पब्लिक सर्विस को ध्यान में रख करके काम करते हैं उन्हें कहा जाता है लोक सेवा प्रसारक। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसलिए बार बार आपको सुनने को भी मिलता होगा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी, हम इस दौड़ में नहीं है कि हमें ज्यादा ज्यादा विज्ञापन मिले, हम जल्दी से जल्दी न्यूज देंगे और हम बड़े रोचक न्यूज देंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। यह पर्पज ही लोक सेवा प्रसारक का नहीं होता है। जब आप आज अखबारों की क्लिपिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। एक खबर आपको मिलेगी, ये आप एडिटोरियल कमेंट के रूप में है, ये इंडियन एक्सप्रेस की है, कि पिछले कुछ सालों से केरल में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। रिवर्स माइग्रेशन कहने का मतलब है कि केरल एक ऐसा स्टेट है जहां से बहुत से लोग विदेशों में गए हुए हैं और खासकर गल्फ कंट्रीज में, अब वहां से लोग वापस आ रहे हैं और जाने वालों की संख्या कम होती चली जा रही है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां की इकोनॉमी में भी शायद थोड़ी सी मंदी की स्थिति आ गई है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कह लीजिए, और हो सकता है कि ये कभी आपके काम आए, और इससे रिलेटेड जो एडिटोरियल कमेंट है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है फ्रेंड्स, कि चीन में जल प्रबंधन का तरीका क्या है। इसमें से एक पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जल प्रबंधन भारत का की एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार इस चुनौती से लगातार जूझ रही है, कि चीन ने अपने यहां एक अधिकारी की नियुक्ति की है जिसे उन्होंने नाम दिया है रिवर चीफ। अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो यह हो जाएगा नदी का मुखिया। नदी का मुखिया यानी कि नदियों के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिया है और उसको अधिकार दे दिए गए हैं कि वो देखे कि वो नदी में साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, कोई इसे गंदा तो नहीं कर रहा है, और उसे बकायदे कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। और लगभग 10 लाख ऐसे रिवर चीफ की नियुक्ति की गई है। ये एक तरीके से कह लीजिए कि नदी और जो जलाशय हैं उनके निगरानी का काम करेंगे। यह एक अच्छा पॉइंट है मेरी समझ से, यदि आप इसे नोट कर लेंगे तो एक फैक्ट के रूप में या सजेशन के रूप में लिखने के लिए आपको कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक एडिटोरियल कमेंट है क्रोनी बॉन्ड्स को लेकर। क्रोनी का मतलब तो है मित्रतापूर्ण, जानते हैं, और बॉन्ड्स, इस बॉन्ड का संबंध उससे है जो खासकर जो व्यक्ति या जो संस्थान है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चुनाव में अनुदान के रूप में देते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका जैसे देशों में भी और भारत में तो है ही कि जो चुनाव है वो बेसिकली चुनाव फंड में पैसा लिया जाता है, प्राइवेट लोगों से पैसा लिया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा धन देने वालों में होते हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो धन देते हैं और फिर उसका वो बाद में चल करके फायदा उठाते हैं। इस बॉन्ड में एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं, उदाहरण के तौर पर कि ये पाया गया है कि जो बॉन्ड के माध्यम से चुनाव में पैसा दिया जा रहा है उसमें 95% बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। यहां बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात इसकी है कि जो सत्ता में होगा उसे ज्यादा चुनावी फंड मिलेगा। इसके बाद कुछ 3-4 उसमें और भी पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्योंकि जो पैसा देने वाला है उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, वो गुप्त रखा जाएगा, और अगर गुप्त इस तरह से 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें उठाए गए हैं। मैं उनकी चर्चा फिलहाल यहां नहीं कर रहा हूं। हां, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, संभव हुआ तो मैं इस पर आपको इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, क्रोनी बॉन्ड्स। देखिए, क्रोनी बॉन्ड्स कहने का मतलब भी है कि आप चुनाव में पैसा देंगे, चुनावी पार्टी को आप पैसा देंगे और इसके बाद फिर आप उसका फायदा उठाएंगे, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। मित्रों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और वह है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोच सकते हैं कि इस विषय को मैंने क्यों चुना है, और यदि आपने अखबारों पर ध्यान दिया हो तो विप्रो के जो मालिक हैं अजीम प्रेम जी, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी धनराशि फिर से अपने फाउंडेशन को ट्रांसफर की है, लगभग 52,000 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना उन्होंने अपने फाउंडेशन को ट्रांसफर किया है और ये फाउंडेशन बकायदे पैसा सामाजिक कामों में लगाती है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में ये पैसा देती है। इस तरह की खबरें बीच बीच में बकायदे आपको पढ़ने को मिलती होंगी। वॉरेन बफे का आपने नाम सुना है, बिल गेट्स का नाम सुना है, जो काफी इस तरह से धन सामाजिक कार्यों के लिए देते रहते हैं। और भारत में प्रेम जी का नाम अभी काफी आगे आ रहा है। इसके बाद नंदन नीलकेनी का भी सुना होगा, किरण मजुमदार का भी नाम सुना होगा, तो ये लोग भी अब सामाजिक कार्यों के लिए काफी धन लगा रहे हैं। खैर, ये मित्रों एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये बकायदे सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि एक साल के गैप के बाद इस टॉपिक पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी अगर मैं लेटेस्ट की ही बात करूं, एक साल पहले की यानी कि 2017 की, तो 2017 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको पहले पढ़ करके सुना देता हूं ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर आपको बहुत ही सटीक तरीके से तैयारी करनी है तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको ये मालूम हो कि किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या है। एक बार अगर आपको तरीका पता लग जाता है तो फिर आपकी तैयारी ज्यादा एप्रोप्रिएट तरीके से हो सकती है। इसी को ध्यान में रख करके देखिए, मैं सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2017 में एक प्रश्न पूछा गया है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है, विश्लेषण कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का यह प्रश्न है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, एनालाइज, और इसका बकायदे आपको विश्लेषण करना है। एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि आपको सिद्ध करना है, विश्लेषण करने और सिद्ध करने में थोड़ा सा फर्क तो है, और फर्क यह है कि जब आप किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो फिर आपको उसके फेवर में ही बात करनी है, लेकिन जब आप विश्लेषण करते हैं तो हो सकता है कि आप उसे सही न पा रहे हो और अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कंपनियों को ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बनाता है और ज्यादा सस्टेनेबल भी नहीं बनाता है, ये कंपनी के लिए नुकसानदायक है, वहां आप एक स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन समझाने के बतौर पर मैंने ये बात आपसे कही है कि आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं पुष्टि करनी है, और क्योंकि आप उसके अगेंस्ट में अगर जाना चाहेंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट उसके लिए तर्क मिलेंगे नहीं। तो मित्रों, ये जो सोशल कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी अगर मैं जानकारी देना चाहूं तो 2013 में इसको लेकर के एक कंपनी विधेयक आया था और कंपनी विधेयक में इसकी व्यवस्था बकायदे सिस्टम के तहत की गई थी। उसमें दो तीन बातें जोड़ी गई थी जो इसी के तहत है, विधेयक का हिस्सा है। नंबर एक कि जो कंपनी का बोर्ड होता है, जो संचालक मंडल है, अभी जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं वो संचालक मंडल के नाम से शायद चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कि उस बोर्ड में एक तिहाई लोग स्वतंत्र निदेशक होंगे, स्वतंत्र निदेशकों को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये मत समझिएगा कि ये केवल समाज के लोगों के प्रति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक प्रकार से कोई भी जो कॉरपोरेट है, जो बड़ी कंपनी है, उससे जिन नैतिकताओं की अपेक्षा की जाती है, जिस पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है, जिस इंटेग्रिटी की अपेक्षा की जाती है, वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के कामों में लगा दिया और उससे सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी निभ गई, वहीं तक वह सीमित नहीं है। उसमें बकायदे है कि एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक रहेंगे और उसमें कम से कम एक महिला निदेशक भी होगी, और उस कंपनी अधिनियम के तहत यह बकायदे व्यवस्था की गई है कि कंपनी अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का, जो उसका नेट प्रॉफिट होगा एनुअल, उसका 2% सोशल वर्क में लगाएगी, 2%। हालांकि उसमें दिया हुआ है कि जो यानी कि थोड़ी सी बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी ऐसा काम करेंगी, एक साल में अगर कोई कंपनी 5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमाती है या उससे अधिक कमाती है तो उसे अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कार्यों में लगाना चाहिए। तो यह इसे अब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि एक लीगल ऑब्लिगेशन बना दिया गया है। अपेक्षा तो पहले भी की जाती थी, लेकिन अब यह कानूनन हो गया है कि आप अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करेंगे। तो मित्रों, चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं इस टॉपिक पर और ज्यादा समय नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस साल के एग्जामिनेशन के लिए मुझे यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इधर प्रेम जी, अजीम और दूसरे लोगों की काफी चर्चा अखबारों में आई है, तो हो सकता है कि इसको आधार बना करके इस टॉपिक पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं: इंद्र मोहन आनंद, मोहम्मद इमरान खान, विकास कुमार, ममता बामनोटे अकेला अकोला महाराष्ट्र से, संदीप पांडे मुंबई से, रोहित चौधरी, केशव कुमार, अनीस अहमद, ज्ञान दर्शन और साजिद हुसैन मुंबई से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साजिद, आपका मैंने मेल पढ़ा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मेल लिखा है। भाषा पढ़ने के बाद मैं इनफैक्ट चमत्कृत रह गया था कि कितने खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात को रखी है, जिसमें भावनाएं हैं, विचार हैं और भाषा की बहुत ही खूबसूरत सजावट और बनावट भी है। सच यह है कि सिविल सर्विस की एक बहुत बड़ी चीज आपके पास है, और वह है भाषा। बस भाषा को थोड़े से आप तर्कों का सहारा अगर दे सके तो शायद आप जिस उद्देश्य से भोपाल के 15 दिन की क्लासेस अटेंड करने के लिए आए थे, उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अंत में एक सूचना यह है कि कल होली का त्यौहार है, आप सबको होली की बहुत बहुत पूर्व शुभकामनाएं। कल मैं आपसे सीधे सीधे रूबरू नहीं हो सकूंगा, परसों फिर मुलाकात होगी और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।